रुकू नंबर 11, वमा अम्वालुकुम वला औलादुकुम बिल्लती तुकर्रिबुकुम इंदना जुल्फा। और तुम्हारे माल और औलाद ऐसे नहीं कि तुम्हें हमारे पास मर्तबों में करीब कर दें। हाँ, जो लोग ईमान लाएं और नेक अमल करें, इनके लिए इनके अमाल का दोहरा अजर है। वो निडर और बेखौफ होकर बाला खानों में रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों के मुकाबले की तगोदाव में लगे रहते हैं, यही हैं जो अजाब में पकड़कर हाजिर किए जाएंगे। कह दीजिए कि मेरा रब अपने बंदों में जिनके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग कर देता है। तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे, अल्लाह इसका पूरा पूरा बदला देगा, और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है। व यौम यक्षुरुहुम जमीया, और इन सबको अल्लाह इस दिन जमा करके फरिश्तों से दरियाफ्त फरमाएगा, क्या ये लोग तुम्हारी इबादत करते थे? कालू सुबहानक अंत वलीयुना मिन दूनिहिम, वो कहेंगे तेरी जात पाक है और हमारा वली तो तू है, ना कि ये, बल्कि ये लोग जिन्नों की इबादत करते थे और इनमें से अक्सर का इन्हीं पर ईमान हो था। बस आज तुम में से कोई भी किसी के लिए नफे और नुकसान का मालिक न होगा, और हम जालिमों से कह देंगे कि इस आग का अजाब चखो जिसे तुम झुठलाते रहे। और जब इनके सामने साफ साफ आयतें पढ़ी जाती हैं, तो कहते हैं ये ऐसा शख्स है जो तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के माबूदों से रोक देना चाहता है, इसके सिवा कोई बात नहीं। और कहते हैं ये तो घड़ा हुआ झूठ है, हक इनके पास आ चुका, फिर भी काफिर यही कहते रहे कि ये तो खुला हुआ जादू है। और इन मक्का वालों को ना तो हमने किताबें दे रखी हैं जिन्हें ये पढ़ते हों, न इनके पास आपसे पहले कोई आगाह करने वाला आया। वकज्जबल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा बलगू, और इनसे पहले के लोगों ने भी हमारी बातों को झुठलाया था, और इन्हें जो हमने दे रखा था ये तो इसके 10वें हिस्से को भी नहीं पहुँचे। बस उन्होंने मेरे रसूलों को झुठलाया, फिर देख कि कैस मेरा अजाब कैसा सख्त था। कह दीजिए मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो। सोचो तो सही, तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून नहीं, वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूं वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो अल्लाह के जिम्मा है और वो हर चीज़ से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि मेरा रब हक के साथ नाजिल फरमाता है और वो हर गैब का जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, ना तो पहले कुछ कर सका और न कर सक बातिल ना तो पहले कुछ कर सका और न कर सकेगा। कह दीजिए अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राहे रास पर हूं तो बस सबब इस वही के जो मेरा परवरदिगार मुझे करता है। सच है ना, इस वही की बात को सुन के हिदायत मिलती है, और वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है। वला उतरा इस फजीउ फला फौत व उखिजू मिम मकान करीब, और अगर आप मुलाहिजा करें जब ये कुफार घबराए हुए फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत ना होगी और वो करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए, लेकिन इस कदर दूर जगह से मतलूबा चीज़ कैसे हाथ आ सकती है? इससे पहले तो उन्होंने इससे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही फेंकते रहे। इनकी चाहतों और इनके दरमियान पर्दा हाइल कर दिया गया, जैसे कि इससे पहले भी इन जैसों के साथ किया गया, वो भी इन्हीं की तरह शक और तरद्दुत में पड़े हुए थे। 11 रुकू पे मैं रुकी नहीं गलती से, पहले 11 रुकू नंबर 11 का के ऊपर बात करते हैं जी। यहाँ पे रुकू ख़त्म हुआ और इसका उन्वान क्या है? कबूलियत वही के रास्ते की नफ्सियाती रुकावटें, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, जिससे इंसान हक को कबूल नहीं करता, हर दौर में होती हैं। जब आप लोगों को देखते हैं, हक की बात करते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि ये मान जाएंगे, देखना आज बात में जो कहूंगी ये फौरन मान जाएंगे, बस देखना आज तो ये होगा, लेकिन बाद में आप देखते हैं लोग नहीं मानते। उसकी कुछ वजूहात होती हैं जो इस रुकू में देखी, कौन कौन सी हैं। नंबर एक, ये ख्याल करना कि हमारे माल और औलाद हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, लिहाजा अमल की ज़रूरत नहीं। होती है ये बात वाकई? लोग बड़े आम खुलेआम कहते हैं एक बच्चे को हाफिज़ बना लो, फिर जो मर्जी करो, वो हमारे लिए बख्शिश की दुआएं कर देगा, हमारे लिए सिफारिश कर देगा, हम अमल क्यों करें? बाज़ लोग कहते हैं माल खर्च कर दो, दे दो मस्जिद को चंदा, थोड़ी डोनेशन दे दो, कुछ ऐसा काम कर लो, फिर नेकी की ज़रूरत नहीं। यानी बाज़ लोग हक के रास्ते को कबूल क्यों नहीं करते, अमल क्यों नहीं करते, कि ज़ोम का शिकार हो जाते हैं। तीसरी चीज़ इसमें जो देखी वो क्या थी, अल्लाह की आयतों को नीचा दिखाने चाहते हैं। ये भी एक साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। अल्लाह की आयतों को नीचा दिखाने से क्या मुराद है, कि इसको बैकवर्ड कहना, अप टू डेट नहीं है, आज के दौर में इस पे अमल नहीं हो सकता, और आज का दौर तो तरक्की का दौर है, और ये बातें तो तब की थी जबकि नहीं थी, और इसी तरह की बातों को बात की गई। फिर इसी तरह आप देखिए कि मैदान महशर को हमारे सामने रखा गया और बताया गया कि उस दिन अल्लाह ताला सब इंसानों को जमा करके फरिश्तों से पूछेगा कि तुम किनकी इबादत करते थे। फिर फरिश्ते जवाब देंगे कि, यानी बात लोग फरिश्तों को भी पूछते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछेगा क्या तुमने कहा था कि हमारी इबादत करो, तो कहेंगे अल्लाह ताला हमने तो नहीं किया। और आप सोचिए वो कितनी ज़बरदस्त किस्म की उनके लिए वो घड़ी होगी कि जब अल्लाह ताला उनसे कहे क्या तुमने कहा था ये करो, और हालांकि उन्होंने नहीं कहा। फिर इसी तरह क़यामत की कुछ और बातें जिक्र करने के बाद मुशरिकीन के रवैये की बात हुई जो कुरान को सुन के करते थे। क्या कहते थे, ये शख्स झूठा है, नऊज़ुबिल्लाह, ये तुम्हें बाप दादा के तरीकों से फेरना चाहता है, यानी ये साजिश है तुम्हारे खिलाफ कि तुम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दो। हक को जादू कहते, यानी नबी सल्लम की दिल फरेब बातें, पुरअसर बातों को जादू कहते, कि ये अपनी बातों के जादू से लोगों को मोह लेते हैं। फिर इसी तरह कहते थे कि हमसे पहले वाले लोगों को क्यों नहीं बताया गया। आपको मालूम है कि मक्का में नबी सल्लम की नबूवत से पहले कई साल की खामोशी थी, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, तो कहते थे कि फिर औरों को क्यों नहीं बताया गया जो हमें बताया गया। हमारे लिए इस रुकू में से अमल की बात क्या है, कि अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करना है, यानी नफ्सियाती रुकावटों को अपने अंदर से निकालना है। अकेले बैठ जाएं, इसका तरीका बड़ा आसान है, अकेले बैठ जाएं, कागज़ कलम सामने रख लें बिल्कुल खाली, और बेहतरीन वक्त है बरातें जो आ रही हैं। कल मैंने जो क़यामुल लैल का लेक्चर था तो उसमें जो इस दिनों में इस रातों में करने के काम है उसमें शायद आप लोगों को याद होगा जिन्होंने सुना, कि ये भी बताया था कि सिर्फ 10 मिनट अपने इख्तिसाब के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों को देखा था, कुरान पढ़ेंगे आप ये, यानी मुख्तलिफ चीज़ों में देखते हुए सीरत की थोड़ी चीज़ देखेंगे, लेकिन 10 मिनट सिर्फ अपने इख्तिसाब, खुद को डिस्कवर करें, मैं कहाँ हूँ, मेरा मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मैं डरती हूँ, मुझे मैं न डर हूँ, क्या मैंने ये सोचा हुआ है मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे, क्या मैंने ये सोचा हुआ है कि मेरा शोहर बचा लेगा। खुद से बातें किया करें, यकीन करें इससे बहुत फ़ायदा होगा। पहले दौर के लोग आपको पता है क्या करते थे, कि रातों को अपने घरों के पिछवाड़ों में जाते और घड़े खोदे होते थे उन्होंने, जैसे कब्र बना के फिर उसके अंदर बैठ के चंद घड़ियाँ गुजारते थे, और महसूस करते थे कि इसी तरह एक दिन मैंने इधर अकेले आना है। हम आज तनहा होते हैं ना तो हम लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक वक्त हम तनहा होंगे, कोई भी नहीं होगा। आज सेलफोन मौजूद हैं, हमारे पास पेजर्स मौजूद हैं, हम इंटरनेट पे रब्ता कर सकते हैं, हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम 911 कॉल कर सकते हैं, फिर भी कितना खौफ करते हैं कि अकेले हैं। उस दिन क्या होगा कि मुनकर नकीर को देख के कोई 911 नहीं आएगा, कोई नहीं पुकार उसके जवाब उस वहशत में करेगा। तो खुद को डिस्कवर करें, यकीन करें हर बंदा की मुख्तलिफ मजा होती है। यानी मेरा दिल करता है कि एक छोटी सी हम साइकोलॉजी की भी क्लास किया करें, कि लोगों के अंदर से उनके राज निकलें, क्या छुपे, क्या चीज़ है जो मुझे रोकती है। और यकीन करें जिस दिन आप अपनी उस चीज़ पे चले गए ना, आपने वो क्ल्यू मिल गया, उसके बाद आप अपने आप को बदल लेंगे। कुछ लोग तारीफ पसंद होते हैं, इसलिए नहीं बदलते, कुछ तनकीद से भागते हैं इसलिए नहीं भागते, कुछ इंसानों को अपनी कमजोरी बना लेते हैं उनसे कटने नहीं चाहते, कुछ लोग माल की कमजोरी अपनी होती है। तो इसी तरह की चीज़ों को थोड़ा सा अपना एहतसाब करें। बेहतरीन दिन है और रात की घड़ियों में इंशाल्लाह आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इन 10 दिनों के बाद कम अज़ कम अपनी 10 बुराइयाँ ज़रूर छांट लेंगे और फिर अल्लाह ने चाहा तो वो आपसे फिर दूर भी हो जाएंगी। बस बातें हमें बहुत बड़ी लगती हैं लेकिन जब अमल करते हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होती। जी के यानी स्कैनिंग के लिए गई और वो एक मशीन होती है बिल्कुल एक सिलेंडर नुमा एक चीज़ होती है, आपको पहले लिटाते हैं फिर वो उसको पुश पीछे से करते हैं तो वो खुद उसके अंदर चली जाती है और वो बिल्कुल दोनों तरफ से बंद हो जाती है। और कह रही है कि उन्होंने मुझे एक बटन दे दिया कि अगर कोई इमरजेंसी हुई कोई घबराहट तो इसको दबाएं। तो इस वक्त इनको कब्र याद आई कि यहाँ तो बटन दबाऊंगी कोई आ जाएगा लेकिन कब्र में क्या करेंगे। यकीन करें जिसको अपनी कब्र याद है ना, जिसको अपना मरना याद है ना, वो लोगों से ऐसे बेनियाज फिरेगा कि तुम मेरी जान छोड़ो बस मुझे करने दो। सिर्फ वही लोग फिर आपके गिर्द रहते हैं जो आपके दीन के मुआविन बनते हैं या जिनकी वजह से आपको फ़ायदा होता है। फिर बेकार चीज़ें, बेकार महफिलें, खाने खा खा के तारीफें करने वाले, दावतें खाने खिलाने, ये एक हिस्सा होता है ज़िंदगी का लेकिन ये मकसद नहीं रहता। हम लोगों के हजूम में जब रहते हैं ना तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि फिर हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप से दूर होते हैं। और आज के दौर का ये मसला है कि आज हम खुद को नहीं सोचते, हमें अपना वक्त याद नहीं आता। अल्लाह अकबर। पढ़ती पढ़ रही थी मैं कुछ तारीख के वाक़यात और बेचैन हूँ आप लोगों के साथ जिक्र करने को रात को कि कैसे थे हमारे इस्लाफ और क्या थी उनकी ज़िंदगियाँ। आज के दौर में हम सोचें तो कभी मान ही नहीं सकते। यानी सुना देती हूँ, जिक्र किया है कि एक दफ़ा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इमाम अहमद के घर में आए, मेहमान बन के आए। यानी आज लोग उनके नाम पे लड़ते हैं और वो एक दूसरे के मेहमान थे, उस्ताद शागिर्द थे। ऐसे ही होता है, लोग आपस में मोहब्बत करते हैं और दूसरे लोग उनको लड़ाने की कोशिशें करते हैं या उनको मुकाबले पे समझते हैं। तो हुआ क्या कि इमाम अहमद की बेटी भी थी, अब वो देख रही थी कि सारा मामला, वो आए उनके घर में, उन्होंने खाना खाया खूब अच्छी तरह, फिर उसके बाद उनको बिस्तर दिया, वो सो गए। जब सुबह हुई तो इमाम अहमद की बेटी कहने लगी कि मैंने तो इमाम शाफी का बड़ा नाम सुना था कि ये तो बड़े आलिम है और बड़े इबादत गुजार होंगे, मैंने तो आज की रात में 3 बातें इनकी देखी जो मुझे तुम शक डाल रही हैं कि पता नहीं इनका इल्म भी ठीक है कि नहीं। कहा क्या देखा तुमने? तो कहने लगी एक तो मैंने देखा कि जूं ही आपने खाना इनके सामने रखा इन्होंने खूब पेट भर के खाया, यानी पेट भर के खाया, हालांकि जहन में आता है कि यानी दीन वाले कम खाएंगे। फिर दूसरी चीज़ मैंने देखी कि जब ये बिस्तर पे सोए तो सोते रहे, कोई रात को उठ के तहज्जुद नहीं पड़ी, यानी सारी रात सोते ही रहे बिस्तर पर रहे। और तीसरी बात जो मुझे अजीब लगी वो क्या है कि सुबह उठे और देखें बगैर वजू के नमाज पढ़ ली फजर की, वजू नहीं किया। तो ये तो इतने बड़े बड़े 3 गुना कर बैठे, आप कैसे कहते हैं ये बहुत बड़े आलिम है? तो आप जाहिर है कि इमाम शाफी ने सुना। अच्छा हम मामला क्या हुआ कि उन्होंने बेटी को कुछ कहने के बजाय उनके बात सामने रख दी कि मेरी बेटी ने ये बात कही आप बताइए। और ये बेहतरीन तरीका होता है किसी की बात उसके सामने ला दें बजाय इसके कि तन्हाई में और अकेले में उसके खिलाफ बातें करें। बहरहाल उन्होंने उनकी बात रखी कि ये आप पे 3 इल्ज़ाम लगे हैं, आप बता दें कि अब इसकी हकीकत क्या है। तो कहने लगे कि मैं तुम्हें 3ों बातों का जवाब देता हूँ। कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, यानी मतलब जब मैं कभी बीमार होता हूँ तो मैं अपने पेट का इलाज किससे करता हूँ? रिस्क हलाल से। कि मैं किसी ऐसे बंदे के घर, यानी रात को जब मैं तुम्हारे घर में आया तो मुझे पूरा इस बात का यकीन था कि तुम्हारा खाना हलाल का है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको इसलिए खा रहा था कि मैं अपने जिस्म के अंदर से उस बीमारियों को निकाल रहा था। यानी एक रूहानी तौर पे ये चीज़ें होती हैं, शायद आप इसको समझें कि ना समझें लेकिन ये सच है कि रिस्क हलाल खाते हैं ना जिस दिन तो उस दिन आपका इबादत में दिल लगता है, और अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कोई ऐसी कमाई चीज़ पेट में जाती है तो इबादत का शौक उतरता है। तो कह रहे हैं कि वो मैं अपना पेट नहीं भर रहा था, मैं अपना इलाज कर रहा था। फिर दूसरी बात है कि जब मैं बिस्तर पे गया, मैं लेटा तो मैंने सोचा कि मैं तहज्जुद पढूं लेकिन उस वक्त मैं किसी एक ऐसे मसले में तदब्बुर कर रहा था कि जिसमें मैंने गौर करते करते 72 मसले अखज किए, तदब्बुर कर रहा था और मैंने उस मसले में से 72 ऐसे पॉइंट्स निकाले कि जिससे उम्मत मुस्लिमा को फ़ायदा होगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं वो काम कर रहा हूँ जिससे उम्मत को फ़ायदा हो रहा है तो मैं इस वक्त अपनी फर्जी नफली इबादत की बजाय अगर यही कर लूँ तो ये बेहतर है। ये पढ़ के बाद तो मुझे इतनी खुशी हुई, यकीन करें, क्योंकि मुझे हमेशा अपने साथ यही गिला रहता है कि मुझसे अपनी इंफरादी इबादत नहीं होती इन्हीं क्लासेस की तैयारी में। और बाकी रह गई बात सुबह भर जो है नमाज बगैर वजू के क्यों पढ़ी, कहते हैं कि सारी रात मेरी आंख नहीं लगी, मैं सोया ही नहीं तो मेरा वजू कायम था तो मैंने वजू के साथ उसी से नमाज पढ़ी। सुभान अल्लाह। पढ़िए तारीख, ये मैं उसी बुक में से पढ़ रही थी जो इंशाल्लाह हम जिसमें से कुछ वाक्यात शेयर करेंगे। ये है वो चीज़ें जो दिलों को बदलेंगी इंशाल्लाह ताला। कुरान बहुत पढ़ चुके, बड़ी दफ़ा बड़ी हुज्जतें तमाम हो गई, अब दिल को बदलना है। उन लोगों को किताबों में से निकाल के अमली मैदान में लाना है, रोल मॉडल है। ये चलते फिरते लोग दिखेंगे आपको, अबू बकर आपको इसी दौर में चलते हुए मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, उम्र फारूक मिलेंगे। शर्त क्या है कि हम इनको अपने जैसा अगर इंसान समझ के इन चीज़ों को समझेंगे। तो ये था रुकू नंबर 11। ये रुकू नंबर 12 को देखते हैं। कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा, कह दीजिए कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात की नसीहत करता हूँ कि तुम अल्लाह के वास्ते जिद छोड़कर दो दो मिलकर या तन्हा तन्हा खड़े होकर सोचो। सोचो तो सही, तुम्हारे इस रफीक को कोई जुनून नहीं, वो तो तुम्हें एक बड़े सख्त अजाब के आने से पहले डराने वाला है। कह दीजिए कि जो बदला मैं तुमसे मांगूं वो तुम्हारे लिए है, मेरा बदला तो मेरे अल्लाह के जिम्मा है, वो हर चीज़ से बाखबर और मुत्तले है। कह दीजिए कि मेरा रब हक को नाजिल करता है और वो हर गैब को जानने वाला है। कह दीजिए कि हक आ चुका, बातिल ना तो पहले कुछ कर सका है और ना कर सकेगा। कह दीजिए कि अगर मैं बहक जाऊं तो मेरे बहकने का वबाल मुझ पर ही है, और अगर मैं राहे हिदायत पर हूँ तो बस सबब उस वही के है जो मेरा परवरदिगार मुझ पर करता है, वो बड़ा ही सुनने वाला और बहुत ही करीब है। और अगर आप उस वक्त मुलाहिजा करें जबकि ये कुफ्फार घबराए फिरेंगे, फिर निकल भागने की कोई सूरत न होगी और करीब की जगह से गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस वक्त कहेंगे कि हम इस कुरान पर ईमान लाए, लेकिन इस कदर दूर जगह से मतलूबा चीज़ कैसे हाथ आ सकती है। इससे पहले तो उन्होंने इससे कुफर किया था और दूर दराज से बिन देखे ही फेंकते रहे। वहीला बैनहुम वबैनमा यश्तहून, इनकी चाहतों और इनके दरमियान पर्दा हायल कर दिया गया है, जैसे कि इससे पहले इन जैसों के साथ किया गया, और वो भी इन्हीं की तरह शक और तरद्दुत में पड़े हुए थे। ये था रुकू नंबर 12। इसका उन्वान क्या है? वो पकड़े जाएंगे। अल्लाह ताला ने एक ऐसी पकड़ का जिक्र किया इस रुकू में जिससे आज लोग अपने आप को बेनियाज समझते हैं। पहले इब्तदा में अल्लाह ताला ने दावत दी लोगों को कि देखो तुम हक को झुटलाते हो ना, छोड़ो, फिर एक तरफ हो जाओ, अकेले सोचो, दो दो लोगों के ग्रोह में सोचो, या फिर बैठ के बड़े बड़े मजमों में सोचो कि आखिर अल्लाह का ये बंदा जो ये बात कहता है इसमें इसका क्या फायदा है? क्या ये जुनून है? क्या जुनूनी लोग ऐसी बातें करते हैं? क्या ये शायर है? शायर ऐसी बातें करते हैं? क्या ये जादूगर है? क्या जादू ऐसा होता है? नहीं, हकीकत क्या है कि जो लोग यानी कुरान को नहीं मानते, फिर वो लोग इसके मुख्तलिफ नाम रखते हैं, इसकी बात को मौसर ना रहने दें, फिर इसके बाद वो पकड़े जाएंगे। इस नाते से हमने पांच बातें देखी कि क्यामत के दिन ये घबराएंगे, यानी जो दुनिया में हक से दूर थे, हक को नहीं मानते थे, वो वहां जाके एक पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन उस वक्त फिर गया वक्त हाथ नहीं आता, इसका एक ये भी अनुमान आप रख सकते हैं, गया वक्त हाथ नहीं आता, क्योंकि वो लोग कोशिश करेंगे कि हम दोबारा दुनिया में जाके ये सब कुछ करें तो उनको फायदा नहीं होगा। हमारे लिए इसमें अमल की बात क्या है कि दीन की एक एक बात को और एक एक हुक्म को आजादी से सोचकर, मिलकर दिमाग लड़ाकर और इसकी कदर मालूम करके कबूल करना है। बहुत बड़ी दावत है इसमें। बाज बातें अकेले बैठ के समझ आ जाती हैं, बाज दो लोग मिलते हैं तो कुछ गिरें खुलती हैं, और बाज बातें फिर ग्रुप्स में समझने की होती हैं। क्या हम लोग इस पे एक एक्टिविटी नहीं कर सकते? इनफरादी तौर पे हम अपने अमलों को देखें, कौन सी बात है, कौन सा हुक्म है जो मुझे समझ नहीं आ रहा? फिर अगर कुछ बातें आप दो दो दोस्त मिल के बैठ के बात करें कि चलो आओ ज़रा देखते हैं हम क्यों नहीं अमल करते, फिर दो दोस्त बैठ के ज़रा दीन के कुछ रुख देखें, फिर इसी तरह किसी ग्रुप में है, महफिल में है, किसी दावत में है, तो वहाँ लोगों के एक मजमे में भी बात की जाए, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। सूरत फातिर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि फातिर अस्समावाति वल अर्द, शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें लायक हैं, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफ़ें सजावार हैं जो शुरू से आसमानों और जमीन को पैदा करने वाला और दो दो तीन तीन चार चार परों वाले फरिश्तों को अपना कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे ज्याती करता है, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ पर कादिर है। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ताला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे, सो इसको बंद करने वाला कोई नहीं, और जिसको वो बंद कर दे, इसके बाद इसको जारी करने वाला कोई नहीं, और वही गालिब और हिकमत वाला है। या अय्युहन्नास उस्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। लोगो, तुम पर जो इनाम अल्लाह ताला ने किए हैं, इनको याद करो। क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिक है जो तुम्हें आसमानों ज़मीन से रोज़ी पहुँचाए? इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम कहाँ से उल्टे जाते हो। और अगर ये आपको छुटलाएं, तो आपसे पहले के तमाम रसूल भी छुटलाए जा चुके हैं। तमाम काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। या अय्युहन्नासु इन्ना वादल्लाहि हक। लोगो, अल्लाह का वादा सच्चा है। तुम्हें जिंदगानी दुनिया धोखे में ना डाल दे, और न धोखेबाज शैतान तुम्हें गफलत में डाले। याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम इसे दुश्मन जानो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसीलिए ही बुलाता है कि सब लोग जहन्नुम में चले जाएं। अल्लज़ीना कफरू लहुम अज़ाबुन शदीद, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फिरतुन व अजरुन कबीर। जो लोग काफिर हुए, इनके लिए सख्त सज़ा है, और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। रुकू नंबर 13 था, इसका उन्वान क्या है? दुश्मन को पहचानो। इब्तदा सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ की बात हुई, छह खूबियों का जिक्र हुआ, आसमान और ज़मीन को पैदा करने वाला, फरिश्तों को पैगाम देने के लिए मुकर्रर करने वाला, मखलूक की साख्त में तब्दीली जो चाहे वो करने वाला, हर चीज़ पे कादिर, जिसके लिए रहमत का दरवाज़ा खोल दे उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसके ऊपर रहमत बंद कर दे उसको कोई दे नहीं सकता, और हिकमत वाला और गालिब है। इसके बाद अल्लाह ताला के कुछ वादों का जिक्र हुआ कि अल्लाह का वादा बरहक है, दुनिया की ज़िंदगी धोखे में न डाले, वो बड़ा धोखेबाज शैतान तुम्हारे पीछे है, इसे दुश्मन समझो। और जो लोग कुफर करें, उनके लिए सख्त अजाब है, लेकिन जो लोग ईमान लाएं, उनके लिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से जन्नतों की उम्मीद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने कुछ एहसानात याद दिलाए। क्या क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक है जो तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिस्क दे? कोई माबूद इसके सिवा तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? कैसे कहते हो कि ये भी अल्लाह के सिवा माबूद है? और सारे मामलात अल्लाह ही की तरफ हैं। और बिल्कुल आखिर में फिर नबी सल्लम को कहा कि आप गम ना करें, इनकी बातें हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ दें। पहले रसूलों को झुठलाया गया। अगर पूरे रुकू में हम अपने अमल की बातें देखें, तो सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह की तारीफ करनी है हर वक्त हर हाल में। दूसरी बात, इस चीज़ का यकीन रखना है कि अगर अल्लाह कोई चीज़ देना चाहे, कोई ले नहीं सकता, और अगर अल्लाह ना दे, कोई दे नहीं सकता। अल्लाहुम्म ला मानिया लिमा आतैत वला मुअतिया लिमा मनात। दुआ कनूत में ये दुआ नबी सल्लम हर रोज़ पढ़ते थे। मैं सोचती हूँ कि अगर ये दुआ हमारे अमल का हिस्सा बन जाए, हमें इस चीज़ का यकीन आ जाए, तो हम लोगों से डरना छोड़ दें, घबराना छोड़ दें। अमूमन जो परेशानियाँ होती हैं हमें, वो क्या होती हैं? लोग हमें नुकसान दे देंगे। आपने कभी सोचा, जो जॉब करते हैं उनको गम क्या लगा रहता है? कुछ लोग मेरी जॉब के दुश्मन हैं, वो ऑफिसर के पास मेरे खिलाफ बातें पहुँचाते हैं, पता नहीं किसी वक्त मेरी जॉब ना छूट जाए। इसी तरह बास लोग दुनिया की कोई नेमत मिल जाती है तो उसके इस वजह से रहते हैं कि नजरे बद लग जाएगी, लोग मुझे बददुआ दे देंगे, और इसी अंदेशों में इंसान फिर बहुत सारी इबादत नहीं कर पाता। यकीन करें कि जिस बंदे को इस बात पे यकीन हो गया ना कि मेरा रब जो देना चाहता है वो मुझसे कोई ले नहीं सकता, फिर उसकी पूरी नजरें अपने रब की रहमत पे रहेंगी, वो उसको राजी करेगा, उसको खुश होगा, क्योंकि जिससे हमें मिलने की उम्मीद होती है ना हम उसकी तरफ निगाहें लगाते हैं। बच्चा क्यों हमारी तरफ देखता है, माँ को क्यों ढूंढता है, भूख लगती है कि माँ दूध देगी, माँ खिलाए पिलाएगी, किसी और के पास नहीं जाता। ये बहुत गहरा नुक्ता है, ये तौहीद की वो कड़ी है, जो लोगों को समझ आ जाए तो यकीन करें दुनिया भी अमन वाली हो जाए और आखिरत भी। जो मेरा है कोई ले नहीं सकता, और जो मेरा नहीं वो मुझे मिल नहीं सकता, जितनी मर्जी भाग दौड़ कर लें, रात दिन आगे पीछे चाल 420ियां कर लें, हेर फेर कर लें, नफे लेने के लिए, नुकसान से बचने के लिए, जो होना है वो होके रहता है। सारा दिन हेर फेर करके कमाते हैं, रास्ते में चोर आता है, हाथ से नोटों का लिफाफा लेके भाग जाता है। कहाँ गया आपका? आपने लिया, मिला नहीं, नसीब में नहीं था आपके। इसके बरक्स अगर इंसान अल्लाह की बात पे कनात करता है तो सुकून मिलता है, और यही चीज़ थी जिसने हमारे असलाफ को मुतमईन किया, और इसी चीज़ की कमी है जिसने आज हमें बेचैन किया हुआ है, भाग दौड़ लगी हुई है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं ना, अपना काम करते रहें, अपने आप को देखिए क्या मैं गलत तो नहीं। अगर मिसाल है कहीं जॉब करते हैं, जो मैंने मिसाल दी, आप ठीक काम कर रहे हैं, वक्त पे आते हैं, जो पैसे ले रहे हैं उसकी इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं, बस फिर कोई आपको नहीं हटाएगा। लोग 10 दफ़ा भी आपके मालिक को कह देंगे ना आके कि ये अच्छा नहीं, ये ख़राब है, आपका अपना अमल जो है वो बहुत प्यारा है। चले आप ख़वातीन से रिलेटेड एक बात करती हूँ जो शायद ज़्यादा मौसर होगी, कि अक्सर ख़वातीन को गम क्या होता है कि हमारा शौहर जब अपनी माँ या बहन के पास बैठता है तो बस वो मेरे ही खिलाफ़ बातें करेंगी। कई बहनें इस नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। वो जो पीछे बात हुई थी ना नफ्सियाती उलझने, तो बाज़ बहनों की ये उलझन होती है कि शौहर को तनहा नहीं छोड़ती। क्यों? ये माँ के पास गया, ये ज़रूर मेरे खिलाफ़ बात करेगी। अच्छा, ये बहन से बैठा है इसीलिए इसने अति गुस्सा किया। वो ये नहीं सोचेंगी कि ये घर क्यों गंदा, वो ये कहेंगी अच्छा आए हैं ना वहाँ से, कुछ कह दिया होगा, कुछ सुन के आए हैं। नतीजा क्या होता है? बदमजगी, बेचैनी, तजस्सुस, क्या हुआ था, क्या हुआ, क्यों गए, ना जाए। नहीं, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमा। अगर आप एक अच्छी बीवी हैं, आपका अच्छा मामला, अच्छा रवैया है, कोई आपके शौहर से आपको दूर नहीं कर सकता। तो लिहाजा दूसरों को मुजरिम करार देने की बजाय अपनी इस्लाह की ज़रूरत है, और शैतान फिर ऐसी चीज़ें डाले तो उससे पनाह मांगनी है। बाकी हम उसको दुश्मन समझते हैं। मुझे ये आयत का हिस्सा बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप भी हाईलाइट करना चाहें, आयत नंबर 6 में, इन्न शैतान लकुम अदुवन फतहिसु अदुवा। इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि शैतान को दुश्मन समझो। मानते हैं क्या वाकई वो रवैया है शैतान के साथ जो दुश्मनों से होता है या होना चाहिए? बहुत कम। हम तो खुश होते हैं कि शायद गहरी दोस्ती इसी से है। चलिए रुकू नंबर 14 को देखते हैं। अफमन ज़ुय्यिना लहू सूउ अमलिही, क्या पस वो शख्स जिसके लिए उसके बुरे आमाल खूबसूरत कर दिए गए, पस वो इन्हें अच्छा समझता है, क्या वो उस हिदायत याफ्ता शख्स जैसा है? यकीन मानो कि अल्लाह जिसे चाहे गुमराह करता है और जिसे चाहे राह रास्त दिखाता है, बस आपको इन पर गम खा खा कर अपनी जान हलाकत में नहीं डालनी चाहिए। ये जो कुछ कर रहे हैं इससे यकीनन अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, और अल्लाह ही हवाएं चलाता है जो बादलों को उठाती हैं, फिर हम बादलों को खुश्क जमीन की तरफ ले जाते हैं और इससे जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा कर देते हैं, और इसी तरह दोबारा उठना है। मन काना युरीदुल इज्जता फलिल्लाहिल इज्जतु जमीया। जो शख्स इज्जत हासिल करना चाहता है तो अल्लाह ही की तरफ सारी इज्जत है, तमाम साफ सुथरे कलमात उसी की तरफ चढ़ते हैं और नेक आमाल इनको बुलंद करता है। जो लोग बुराइयों के दावघेत घात में लगे रहते हैं इनके लिए सख्त तर अजाब है, और इनका ये मकर बर्बाद हो जाएगा। वल्लाहु खलककुम मिन तुराब थुम्मा मिन नुतफा थुम्मा जालकुम अज़वाजा। लोगों, अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से, फिर नुतफे से पैदा किया, फिर तुम्हें जोड़े जोड़े बना दिया। औरतों का हामिला होना और बच्चों का पैदा होना सब इसके इल्म से है। और जो बड़ी उम्र वाला उम्र दिया जाए और जिस किसी की उम्र घटे, वो सब किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला पर ये बात बिल्कुल आसान है। और बराबर नहीं दो दरिया, एक मीठा है, प्यास बुझाता है, पीने में खुशगवार है, और दूसरा खारी है, कड़वा। तुम दोनों में से ताज़ा गोश्त खाते हो और वो जेवरात निकालते हो जिन्हें तुम पहनते हो। और आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ पानी को चीरने फाड़ने वाली इन दरियाओं में हैं, ताकि तुम इसका फजल ढूंढो और ताकि तुम इसका शुक्र अदा करो। यूलिजुल लैल फिन नहार व यूलिजुन नहार फिन लैल, वो रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है, और आफताब और माहताब को इसी ने काम में लगा रखा है। हर एक मुअय्यन मियाद पर चल रहा है, यही है अल्लाह। तुम सब का पालने वाला इसी की सल्तनत है। जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो, वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। इन तदउहुम ला यस्माउ दुआअकुम, अगर तुम इनको पुकारो तो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिलफर्ज सुन भी लें तो फरियाद रसी न कर सकेंगे, यानी मदद नहीं कर सकते। बल्कि क्यामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर देंगे। आपको भी कोई हक ताला जैसा खबरदार खबरें न देगा। ये तरकु नंबर 14, इसका उन्वान क्या है? ईमान के दलाइल। अल्लाह ताला ने इस रुकू में 5 दलाइल दिए हैं ईमान लाने के। इस बात पे ले आओ, इस पे ले आओ, इस पे ले आओ। शुरू में जो बात हुई वो क्या हुई कि हिदायत और गुमराही अल्लाह के हाथ में है। बुरे काम करने वालों के अमल उनको खूबसूरत दिखते हैं, सच है। बुरे बुरे काम करके लोग अच्छा काम समझते हैं। दूसरी बात, जो हिदायत का तालिब होता है फिर उसको अल्लाह हिदायत भी देता है। फिर अल्लाह के नबी को कहा कि आप इन पे गम ना करें, ये नहीं समझेंगे, इनको नहीं समझना, छोड़ दें इनको इनके हाल पे, और जो कुछ ये कर रहे हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। उसके बाद पहली दलील क्या दी ईमान लाने की, कि मरे हुए इंसानों का जी उठना मुमकिन है ना? कैसे? हवाएं बादलों को उठाती हैं फिर मुर्दा ज़मीन की तरफ जाती हैं, इसी तरह मुर्दा ज़मीन को अल्लाह ताला सब्ज़े के ज़रिए ज़िंदा करता है। तो लिहाजा जान लो कि मरने के बाद जी उठोगे। और हर रोज़ हम सो के उठते हैं, ये मौत के बाद उठना नहीं तौर के। कहते हैं ना, सोया और मोया एक बराबर, सो गए तो गए, इसी तरह सोएंगे एक गहरी मौत और फिर निकल जाएंगे। दूसरी दलील क्या है? इंसानी तख्लीक के मराहिल हुज्जत हैं। पहले मट्टी थे, फिर नुतफा बना, फिर अल्लाह ने जोड़ा बनाया, फिर कोई औरत हामिला होती है, प्रेग्नेंट होती है, या बच्चा पैदा होता है, सबको अल्लाह जानता है। इसी तरह फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है और फिर दोबारा वैसा हो जाएगा जैसा कि पैदा हुआ था। जैसे मरने के बाद मिट्टी में मिल के मिट्टी बनते हैं, इसी तरह ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल हमें हमारी मौत याद दिलाते हैं। आपको महसूस होती है कभी ये चीज़? आप देखिए कि जब उम्र बढ़ती जाती है ना, तो साथ ही साथ फिर इंसान को कुछ कमजोरियां होती हैं। मैंने देखा है कि लोग, वो लोग जो एक वक्त था भाग दौड़ के काम करते होते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, जो घंटों बात करते थे अब उनसे 1 घंटा भी बात नहीं होती। ये वक्त जो होता है, ये नेमतें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हमेशा अपनी सलाहियतों को देख के ये कहा करें कि जितना इसका फायदा उठाना है उठा लो, कल पता नहीं क्या हाल होगा, कल पता नहीं फुर्सत होगी कि नहीं, कल पता नहीं कोई बीमारी ना आ जाए, कल पता नहीं इतनी देर बैठ भी सकूंगी कि नहीं, कल पता नहीं इतनी देर बोल भी सकूंगी कि नहीं, कल पता नहीं कान जवाब तो नहीं दे देंगे सुनना। मैं हमेशा ऐसी चीज़ों से अपने आप को हिम्मत दिलाती हूँ। कभी भी थकने लगो, हिम्मत टूटने लगे, तो मैं ये सोचती हूँ कि आज को आज का फ़ायदा ले लो, कल किसने देखी है, न जाने हम नौ। मैंने जब ये कुरान शुरू कराया तो मैंने कहा अल्लाह ताला मुझे मोहलत देना कि मैं इसको पूरा करा लूँ, शायद मेरे बाद यही को मेरे लिए काम बन जाए। हर एक दिन जब गुजरता है तो मैं कहती हूँ अल्लाह का शुक्र है, चले अगर आज मेरी जान चली गई कुछ तो पास है, लेकिन दिल में धड़का लगा हुआ है अभी भी कि पता नहीं कुरान पूरा करवा सकूंगी कि नहीं, चलो आज कुछ कर लो। क्या हुआ, एक दफ़ा बात की फिर दोबारा कर लेते हैं, कल के दिन में 3 दफ़ा बात की मैंने सारे दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने सोच लिया कि मैंने अपने वक्त का इस्तेमाल करना है। अगर अल्लाह ने एक नेमत मुझे दी है, मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं पहुंचा सकती हूँ, तो मैं क्यों अपने ऊपर इसको रखूँ? मैं इस वक्त में कुछ और करूंगी, किसको फायदा होगा, सिर्फ मुझे होगा। और अगर मैं ये काम करूंगी शायद किसी के दिल में बात आ जाए। हमेशा अपने आप को खुद सीखा करें, ये साइकोलॉजिकली अपने आप को तैयार करना होता है। और वरना आज हिम्मत छोड़ें, आप देखें कि आप नेकी का काम करने लगते हैं, लोग आप पे रहम खाने लगते हैं। हाय बेचारे, किसी ने कहा हाय आप हर रोज पढ़ाती हैं, तो मैंने कहा सारा दिन तो नहीं पढ़ाती, मैं तो सिर्फ 3 घंटे पढ़ाती हूँ, तब मैं कोई एक क्लास लेती थी, मैंने कहा 24 घंटे में से सिर्फ 3 घंटे, मुझे तो शर्म आ रही है, तो चुप हो गई। यदि बाज लोगों को कहें आप कुरान पढ़ें, कहते हैं हाँ वो हम एक क्लास ले रहे हैं, तो कहते हैं अच्छा माशाल्लाह आप रोज लेते हैं, नहीं हफ्ते में वो एक दिन फलां जगह जाते हैं 1 घंटे की क्लास। रुक के भाई, सोच लिया इससे आगे नहीं जाना, नेवर, बस एक दिन बहुत है, बस अल्लाह ताला एक दिन बहुत। वो क्या अलामा इकबाल का शेर याद आ गया, कहते हैं कि कारे जहां दराज है अब मेरा इंतजार कर, कहते हैं मुझे क्यों इस दुनिया में भेजा, अच्छा था जन्नत में रहता तुझे याद करता, अब दुनिया में भेजा बैठ के मेरा इंतजार कर, मुझे बड़े काम है। और देखा जाए तो आज हम यही तो कर रहे हैं, जिस काम के लिए आए जरा उस काम में इजाफा होता है तो हमारा दिल खट्टा होता है, दिल में आला आता है, हम पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, कितने बुरे ख्याल आते हैं, ये नहीं सोचते कि एक नेकी का और मौका, एक और वक्त, एक और दावत। और हर दावत हर एक के लिए तो होती भी नहीं, जो नहीं कबूल कर सकता वो ना करे, लेकिन जो कर सकते हैं बेचारे वो उसको तो मान लें। तो लिहाजा अपने आप को कभी भी जाया नहीं करना। फिर तीसरी चीज, इस दलील जो आई थी वो समंदरों के पानी का अलग अलग होना, एक मीठा है और एक कड़वा, दो जखीरे हैं, एक प्यास बुझाता है पीने में जायका अच्छा है और दूसरा खारी है। मैं इस आयत को भी जब पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था कि एक लोगों को नफ़ा दे रहा है, मिठास है, बात करने की भी बात अच्छी है, फिर जो फ़ायदा लोगों को मिल रहा है उनके अंदर उससे एक रूहानियत आ रही है, एक खुराक आ रही है। यानी आप देखिए कि पानी का और दीन के काम का बहुत गहरा ताल्लुक है। आपने देखा है कि बारिश से जिक्र दिया जाता है, वही को बारिश कहा गया, इसी तरह बहते दरिया, यानी जब इंसान दूसरों के नफे का काम करता है तो जिसको मज़ा आता है, जिसको वो बात अच्छी लगती है, उसको वो बात समझ भी आ जाती है, और बास लोग उसी बात को कड़वा समझते हैं, हमसे नहीं सुनी जाती, हमें तो ये दीन की बातें मुश्किल लगती हैं, तो फिर नुकसान किसका होता है? तो लेकिन अल्लाह ताला ने हर मिसाल सामने रख के बता दिया कि देखो जैसे तुम मीठे पानी से मछली लेते हो ना, ऐसे नमकीन से भी लेते हो। यहाँ एक मैं आपको भी एक जोड़ करके दिखाती हूँ, पहले पॉइंट इसका लिख लें, मीठे और कड़वे पानी की जो मिसाल दी है, एक मीठे पानी की दरिया है आप समझ लें, तसव्वुर में लें, और एक कड़वे पानी का है। अब दोनों साथ रहते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं, ठीक है? फिर इंसान बाज कहते हैं कि ये तो बहुत मीठा है, इसको तो हम फायदा लेंगे, ये बड़ी कड़वी बात करता है, इसकी बात का हम फायदा नहीं लेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें मछलियाँ दोनों से देता हूँ, कौन है वो मछेरा जो कहे कि मैं सिर्फ मीठे पानी से मछली पकड़ लूंगा, ये नमकीन पानी की मछली नहीं लेनी, बल्कि वो बाज़ दफ़ा ज़्यादा मज़े की होती है, मेरा ख्याल है कि वो उसकी कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता होगा। तो असल बात के कि हालात कैसे भी हों, आपके सामने कोई भी है, आपकी अक्लमंदी के कि आप उससे अपनी खैर ले लें, ये मत लड़ें कि पानी कड़वा है, नमकीन है, खलक उड़ता है। मैंने देखा है बाज़ लोग दीन की महफिलों में आते हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बदल गए, क्योंकि दीन वालों को भी पता लग गया कि सख्ती करेंगे तो लोग भाग जाएंगे और बुरा मानेंगे। बाज़ लोग मैंने क्रिटिकली देखा है कि लोग दीन की महफिलों से आते थे और फिर बैठ के बातें करते थे, हम नहीं जाएंगे इनके दर्स में, बहुत सख्त बातें करते हैं, बहुत डराते हैं, चलो ना जाओ, किसका क्या हुआ? तुम अच्छे क्या थे कि उस कड़वे में से एक मीठी बात ले आते, अपना नसीब अपना ही, वो कहते हैं ना कि नसीब अपना अपना है, उसी में फिर आप देखिए गहने जेवरात दोनों में से निकलते हैं, कोई सिर्फ इस वजह से मोतियों को जाया करते हैं का पर्ल्स को कि ये नमकीन पानी से क्यों निकले, वो तो समंदरों में से निकलते हैं, इतना कड़वा पानी, और वहां से अल्लाह ताला मोती निकालता है। बाज दफा कड़वी बात भी अच्छा फायदा देती है, बड़ों की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, बुजुर्गों की नसीहतें अच्छी नहीं लगती, और ये बात मुझे पता है आप अपने बच्चों को जरूर जाके बताएंगे, तभी आप लिख रहे हैं इस बात को, क्यों कि आप कड़वी बात से फायदा लेने वाले बनो। माँ बाप की बात आज बुरी लगती है कल अच्छी लगेगी, उस्ताद की बात बुरी लगती है शायद फिर अच्छी भी लगेगी, और फिर उन्हीं के अंदर कश्तियां चलती हैं, वो नहीं कहती कि नमकीन पानी में नहीं जाऊंगी, मीठे में जाऊंगी। तो लिहाजा फिर बात का खुलासा क्या हुआ, अक्लमंद वो है जो अपने हिस्से का फायदा ले ले। फिर चौथी दलील आपने रात और दिन के आने जाने में देखी, इसमें से आप खुद ही अब अमल की बातें निकाल लें। पांचवी चीज, सूरज और चांद के एक दूसरे के पीछे आगे जाने को देखा आपने, किस तरह अल्लाह ताला ने इसको रखा। और एक आयत जो बड़ी प्यारी है, मेरा दिल चाह रहा है कि आप हाईलाइट करें इस रुकू में, वो क्या है, मन खाना युरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जत जमीया। ये है आयत, इज्जत अल्लाह ही के पास, आयत नंबर 10 है ये। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहता है इज्जत देता है और इसी के काम में इज्जत है। दोनों बातें इसमें, इज्जत अल्लाह ही देता है और मिलती भी इज्जत अल्लाह ही के पास से है, और हम लोगों से ढूंढते हैं, लोगों से इज्जत का सवाल है, ये मेरी इज्जत का सवाल है ना। अपना हुलिया क्यों नहीं बदलते, स्टेटस का मसला लगता है, मेरी इज्जत खराब होगी, लोग बातें करेंगे। देखो अभी इस दौर में अब ऐसे ऐसे हुलिये, तो कोई बात नहीं, इज्जत तो फिर रब से मिलेगी।